अध्याय 16 वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है इसमें पदों के पारस्परिक संबंध का विचार किया जाता है। हमने पहले देखा है कि ध्वनि का संबंध भाषा के उच्चारण से है, जो मुख्यतः शारीरिक व्यापार है। ध्वनि समूह में ही जब सार्थकता का समावेश हो जाता है और वह परस्पर अन्वय के योग्य बन जाता है तो उसे पद कहते हैं। पद रचना में शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष काम करते हैं। उच्चारण का प्रश्न शारीरिक पक्ष के अंतर्गत आता है और सार्थकता का प्रश्न मानसिक पक्ष के अंतर्गत। वाक्य पूर्णतः मानसिक या मनोवैज्ञानिक तत्व है। उसमें पदों का प्रयोग भाव या विचार के अनुसार होता है। पद ध्वनि और वाक्य के बीच की संयोजक कड़ी है, क्योंकि उसमें उच्चारण और सार्थकता दोनों का योग रहता है, किंतु न तो ध्वनि की तरह वह केवल उच्चारण है और न वाक्य की तरह पूर्णतः सार्थक। पद विज्ञान में पदों की रचना का विचार होता है, अर्थात संज्ञा, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के वाचक शब्द कैसे बनते हैं, यह पद विज्ञान के अंतर्गत है। किंतु उन पदों का कहाँ कैसे प्रयोग होता है, यह वाक्य विज्ञान का विषय है। पद और वाक्य के आपेक्षिक महत्व के संबंध में दो सिद्धांत हैं, जिन्हें अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद कहते हैं। ये दोनों सिद्धांत मीमांसकों के हैं। अभिहितान्वयवाद पद की सत्ता मानता है और अन्विताभिधानवाद वाक्य की। एक का कहना है कि पदों को जोड़ने से वाक्य बनता है और दूसरे का कहना है कि वाक्य को तोड़ने से पद बनते हैं। इस तरह अभिहितान्वयवाद को पदवाद और अन्विताभिधानवाद को वाक्यवाद भी कह सकते हैं। अन्विताभिधानवाद के अनुसार पद की पृथक सत्ता नहीं है। आधुनिक भाषा विज्ञान इसी सिद्धांत का समर्थक है, क्योंकि भाषा के न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य ही है। भर्तृहरि ने भी इसी का समर्थन किया है। पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्षेष्णवयवया न च वाक्यात् पदानामत्यं प्रविवेको न कस्मचन। वाक्यपदी ब्रह्मकांड 73। जिस प्रकार वर्णों में अवयव नहीं होते, उसी प्रकार पदों में वर्ण या वाक्य में पद नहीं होते। कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य की ही सत्ता वास्तविक है, पद या वर्ण की काल्पनिक। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्धांत मान्य ठहरता है। भाषा की परिभाषा के प्रसंग में हमने देखा है कि भाषा का प्रयोग भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए होता है और पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य से ही संभव है, पद से नहीं। वस्तुतः विचार तो एक प्रकार से अखंड प्रवाह है, जो कभी अवरुद्ध या बाधित नहीं होता। उस प्रवाह में वाक्य के नीचे उतरने पर अर्थ का रूप भी खंडित हो जाता है। अभिहितान्वयवाद के अनुसार पदों के योग से वाक्य की निष्पत्ति होती है, किंतु उसके लिए तीन चीजें अपेक्षित हैं, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। पहला, आकांक्षा। आकांक्षा कहते हैं अर्थ की अपूर्णता को, जैसे लड़का। शब्द सुनने पर स्वभावतः यह जिज्ञासा होती है कि वक्ता उसके विषय में क्या कहना चाहता है। केवल लड़का शब्द सुनने से श्रोता को संतोष नहीं होता, वह यह जानने को उत्सुक रहता है कि लड़के के संबंध में क्या कहना अभिष्ट है। इसलिए आकांक्षा एक प्रकार की मानसिक स्थिति है, जिसका महत्व श्रोता की दृष्टि से है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आकांक्षा का संबंध श्रोता की ग्रहणशीलता या उत्कंठा से है। बात यह है कि पदों का अन्योन्याश्रयत्व होता है। एक पद देने में असमर्थ है, इसलिए वह दूसरे पदों की सहायता लेता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में तीन पद हैं जो परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं और तीनों मिलकर ही एक समुदित और पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराते हैं। इनमें से किसी एक को हटा देने पर पूर्ण अपूर्ण रह जाता है और आकांक्षा की निवृत्ति नहीं होती। आकांक्षा श्रवणेच्छा की निवृत्ति वाक्य से ही संभव है, पद से नहीं, क्योंकि वाक्य का प्रयोजन है अर्थ का संप्रेषण। जब तक अर्थ का संप्रेषण पूर्ण नहीं, तब तक भाषा का प्रयोग निरर्थक है। वक्ता एक पद बोलकर संतुष्ट हो जाता है, हो सकता है और समझ सकता है कि उसे जो कहना था उसने कह दिया, पर कथन पूर्ण हुआ या नहीं इसका निर्णायक श्रोता है, वक्ता नहीं, क्योंकि उसी के बोध या प्रतीति के अनुसार भाषा के प्रयोग की सार्थकता मानी जाएगी। दूसरा, योग्यता। योग्यता का अर्थ है पदों के परस्पर अन्वय में बाधा का अभाव। पदों के अन्वय में बाधा दो प्रकार से पड़ सकती है, क अर्थ या प्रतीति की दृष्टि से और ख पदों के अन्वय की दृष्टि से। एक का संबंध मन से है और दूसरे का व्याकरण से। किताब से पानी भरता है या पहाड़ उड़ता है, इन वाक्यों के प्रतीति मूलक बाधा है। कारण कि न तो किताब से पानी भरना संभव है और न पहाड़ का उड़ना। व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों वाक्यों में कोई असंगति नहीं है। पदों का अन्वय व्याकरण सम्मत ढंग से हुआ है और दोनों वाक्य व्याकरण से शुद्ध एवं संगत हैं, परंतु प्रतीति या अर्थ संबंधी बाधा स्पष्ट है। वाक्य में पदों का प्रयोग करते समय इसका ध्यान रखना होता है कि वे पृथक पृथक ही सार्थक न हो बल्कि मिलने पर भी सार्थक रहें। ऊपर के दोनों वाक्यों में प्रयुक्त पद पृथक पृथक तो सार्थक हैं किंतु मिलने पर निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि उनसे कोई संगत अर्थ नहीं निकलता। अन्वय की दृष्टि से बाधा वही होती है जहाँ व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार पदों का विन्यास नहीं होता। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित वाक्यों के व्याकरण संबंधी योग्यता का अभाव है। लड़का खेलती थी, लिंग विषयक अयोग्यता। लड़के खेलता था, वचन विषयक अयोग्यता। हम जाता है, पुरुष विषयक अयोग्यता। राम ने पढ़ता है, विभक्ति विषयक अयोग्यता। इन वाक्यों में सार्थकता का अभाव नहीं है, क्योंकि यदि व्याकरण के अनुसार पदों के अन्वय के जो नियम है उनका पालन नहीं हो सका है। पदों की अनुमति में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि का ध्यान अपेक्षित होता है। उन्हीं पदों का परस्पर अन्वय संबंध है जो समान कोटि के हों। इस दृष्टि से प्रत्येक भाषा के अन्वय पद्धति भिन्न होती है, जिसका निर्धारण उस भाषा के व्याकरण से होता है। पदान्वय की स्वीकृति पद्धति के प्रतिकूल प्रयोग को ही अशुद्धि कहते हैं। तीसरा, आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है समीपता। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों को देश और काल दोनों ही दृष्टियों से परस्पर आसन्न रहना चाहिए। अगर वे दूर पड़ जाएं तो अर्थबोध में बाधा होगी। उदाहरणार्थ, आज कहें लड़का और कल कहें खेलता है तो अर्थबोध नहीं होगा। लड़का कहने के तुरंत बाद खेलता है का उच्चारण होना चाहिए। यह एक प्रकार की आसक्ति है। दूसरे प्रकार की आसक्ति वह है जिसमें पद उच्चरित तो होते हैं किंतु स्थान की दृष्टि से एक दूसरे से दूर पड़ जाते हैं। जैसे, लड़का सूर्य दौड़ता है, फूल पड़ता है, चमकता है, घोड़ा खिलता है, अथवा पढ़ा ने था कल मैं अखबार। इन दोनों वाक्यों में सभी पद सार्थक हैं। उनमें अन्वय की योग्यता भी है, आसक्ति भी है, पर आसक्ति का क्रम बाधित है, इसलिए अर्थबोध नहीं हो पाता, और होता भी है तो कठिनाई से। उपर्युक्त प्रथम पद समूह का सार्थक रूप होगा लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, सूर्य चमकता है, फूल खिलता है और का दूसरे का मैंने कल अखबार पढ़ा था। सार्थकता इन दोनों पद समूहों में है, पर पदों का विन्यास हिंदी की स्वीकृत पद्धति पर नहीं होने से अर्थ की स्पष्टता बाधित हो जाती है। सामान्य दृष्टि से वाक्य निर्माण के लिए आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति तीनों आवश्यक हैं, किंतु व्याकरण की दृष्टि से सबसे अपेक्षित योग्यता ही है। ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें एक पद का ही प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, बाघ, सांप, भागो, बचाओ। इनमें आकांक्षा की निवृत्ति एक पद से ही हो जाती है। ऐसे अवसरों पर वक्ता या श्रोता अनेक पद वाले वाक्य के आग्रही नहीं होते। संभव है व्याकरण सम्मत अनेक पदात्मक वाक्य का प्रयोग करने में जान चली जाए। भाषा का वैसा प्रयोग निश्चय ही बड़ा महंगा पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक पद सुनने पर भी आकांक्षा निवृत्त हो जाती है, और आकांक्षा की निवृत्ति हो गई तो अर्थ का पूर्ण बोध हो गया। इसलिए उभय अथा आकांक्षा अनिवार्य तत्व नहीं है। आसक्ति की भी वही स्थिति है। आसक्ति की उपेक्षा पद में तो होती ही है, इसलिए पद का अर्थ करने में पहले पदों का अन्वय करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल्लवल्लभ की प्रभा प्रिय प्रवास। यहाँ पदक्रम उल्टा है, इसका स्वाभाविक रूप होगा अब तरुशिखा पर कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा राजती थी। इसी प्रकार अंग्रेजी के निम्नलिखित वाक्यों का भी पदक्रम स्वाभाविक नहीं है। स्ट्रेंजेस फिट्स ऑफ फैशन आई हैव आई नोन वर्ड्सवर्थ, या अपॉन द मून आई फिक्स्ड माय आई वर्ड्सवर्थ। इनका स्वाभाविक रूप होगा आई हैव नोन स्ट्रेंजेस सिट्स ऑफ फैशन और आई फिक्स्ड माई आई अपॉन द मून। भाषा विज्ञान की दृष्टि से योग्यता ही ऐसा तत्व है जो वाक्य विन्यास में आवश्यक है। उसके न रहने पर वाक्य प्रतीति की दृष्टि से अर्थहीन हो जाता है, रचना की दृष्टि से अग्राह्य। वाक्य रचना और पदक्रम के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने की है। पहला, यदि भाषा का इतिहास दीर्घव्यापी है तो एक की वाक्य रचना दूसरे युग से भिन्न हो सकती है। दूसरा, ध्वनि या पद की अपेक्षा वाक्य रचना पर अन्य भाषाओं का प्रभाव अधिक आसानी से पड़ता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की अंग्रेजी हिंदी वाक्य विन्यास से बहुत कुछ प्रभावित होती है। जैसे उसने कहा था कि वह आएगा, यह वाक्य अंग्रेजी के नरेशन से प्रभावित है। हिंदी के अनुसार उसने कहा था कि मैं आऊँगा होना चाहिए। अंग्रेजी के प्रभाव के रोचक और पर्याप्त उदाहरण हिंदी में देखने को मिलते हैं। तीसरा, पदक्रम के अध्ययन के लिए पद की अपेक्षा गद्य की भाषा अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें पदों का विन्यास भाषा की नैसर्गिक पद्धति पर होता है। चौथा, इसी प्रकार अनुवाद की अपेक्षा मूल पाठ की भाषा पदक्रम की दृष्टि से अधिक उपयोगी होती है, कारण कि एक भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित करते समय उनके परस्पर प्रभावित होने की संभावना रहती है। पांचवा, अलंकृत शैली की अपेक्षा सरल शैली पदक्रम के अध्ययन की दृष्टि से अधिक उपादेय होती है, क्योंकि अलंकारिक या सौंदर्यात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लेखक प्रायः पदों का क्रम उलट पुलट देते हैं, किंतु सरल शैली में भाषा का सहज प्रभाव सामने आता है। इस दृष्टि से कादंबरी की अपेक्षा हितोपदेश की भाषा अधिक उपादेय है। हिंदी में प्रसाद की अपेक्षा प्रेमचंद की भाषा भाषा विज्ञानियों के काम की अधिक है। छठा, शिक्षा का प्रभाव पदक्रम का निर्धारक हुआ करता है। शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित की भाषा किस भाषा की पदरचना के अधिक अनुकूल होती है। शिक्षित व्यक्ति क्योंकि भाषा में कुछ न कुछ कृत्रिमता आ ही जाती है। सातवां, पदक्रम के अनुशीलन के लिए लिखित की अपेक्षा उच्चारित भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति की भाषा लिखने और बोलने की एक ही नहीं होती। बोलते समय भाषा का सहज रूप सामने आता है और लिखते समय उसमें थोड़ी बहुत कृत्रिमता का समावेश हो जाता है। वाक्य में पद विन्यास की विशेषताएं। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति की व्याख्या के प्रसंग में जो कहा गया है उसका प्रकारांतर से स्पष्टीकरण इस प्रकार है। वाक्य में प्रयोग करते समय पद संबंधित तीन विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला चयन, दूसरा क्रम और तीसरा अपरिवर्तन। पहला चयन, वाक्य निष्पत्ति के लिए सबसे पहले पदों का चयन करना होता है। अर्थ और रूप दोनों ही दृष्टियों से चयन अपेक्षित है। एक ही अर्थ के वाचक अनेक पद होते हैं, उनमें किसका प्रयोग किया जाए वाक्य का संबंध मनोविज्ञान से है और मनोविज्ञान का अर्थ से, अर्थात वक्ता क्या कहना चाहता है इससे। सामान्यतः एक अर्थ के वाचक अनेक पर्याय होते हैं। उदाहरणार्थ स्त्री के अनेक पर्याय हैं, नारी, महिला, अबला, वामा, रमणी आदि। किंतु पर्याय होने पर भी इनमें काया का भेद है। नारी का वही अर्थ नहीं है जो अबला का। नारी में नर की संगिनी का भाव है, किंतु अबला में बलहीनता का। वामा में वक्रता की व्यंजना होती है तो रमणी में रमण की। प्रयोग के समय विशेषता पर ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा वक्तव्य में जो सूक्ष्मता अभिष्ट होती है उसमें बाधा पड़ती है। चयन का एक पक्ष तो अर्थ का है, दूसरा रूप का। प्रयुक्त स्त्रीवाची प्रत्येक शब्द के कारक वचन आदि के अनुसार अनेक रूप हो जाते हैं। सभी रूप सर्वत्र प्रयुक्त नहीं हो सकते। जैसे नारी का पढ़ती है में नारी का प्रयोग गलत है, क्योंकि पढ़ती है क्रिया से उसकी अनुमति नहीं हो सकती। नारीपद की विभिन्न कारकों के प्रायः दो दर्जन रूपों में यह देखना पड़ेगा कि वांछित प्रसंग के लिए इसका प्रयोग सार्थक होगा। अर्थ की दृष्टि से चयन का आधार मनोविज्ञान भाव की सूक्ष्मता है, किंतु रूप की दृष्टि से चयन का आधार योग्यता है, जिसका विचार पहले से हो चुका है। कहाँ किस पद का प्रयोग उचित होगा इसका निर्णय योग्यता कसौटी पर ही होता है। उदाहरणार्थ न निषेध वाचक पद है, किंतु मैंने न देखा या न का प्रयोग नहीं हो सकता है। यहाँ मैंने नहीं देखा यही कह सकते हैं, किंतु मैंने न देखा न सुना इसमें न बिल्कुल संगत है। यहाँ मैंने नहीं देखा नहीं सुना यही वाक्य असंगत लगेगा। दूसरा, क्रम। वाक्य में पदक्रम का महत्व बहुत बड़ा है। पदक्रम का अर्थ यह है कि किस पद के बाद कौन पद रहे। जिस किसी पद को जहाँ कहीं नहीं रख सकते, पदक्रम की कोई एक और निश्चित पद्धति नहीं है। सभी भाषाओं का पदक्रम एक नहीं होता। सामान्य धारणा है कि कुछ भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, आदि का पदक्रम निश्चित होता है और कुछ संस्कृत रूसी आदि का स्वतंत्र। कुछ दूर तक यह धारणा ठीक है किंतु सर्वथा मान्य नहीं है। किसी भाषा का पदक्रम न तो बिल्कुल निश्चित होता है न पूर्णतः स्वतंत्र। पदक्रम का निर्धारक केवल व्याकरण नहीं मनोविज्ञान भी हुआ करता है और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर पदक्रम में परिवर्तन करना पड़ जाता है। वस्तुतः व्याकरण के नियम भी मूलतः मनोविज्ञान से ही निर्मित होते हैं। पदक्रम में यूं तो सभी पदों का ध्यान रखना होता है क्यों तो प्रधानता कर्ता कर्म और क्रिया की होती है। कारणों में भी स्वर्ण शेष गौण रहते हैं। हिंदी के पदक्रम में पहले कर्ता तब कर्म तब क्रिया का स्थान होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, राम पानी पीता है। इन दोनों वाक्य में क्रमशः कर्ता कर्म और क्रिया का प्रयोग है। इसके प्रतिकूल अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्रिया जाती है और उसके बाद कर्म। जैसे He reads the book, Ram drinks water। अंग्रेजी में हिंदी के अनुसार He the book reads या Ram water drinks नहीं कह सकते। संस्कृत में क्रम का कोई कठोर बंधन नहीं। जैसे सह पुस्तकम पठति, पुस्तकम सह पठति, पठति सह पुस्तकम, पठति पुस्तकम सह, यदि अनेक रूप पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि हिंदी अंग्रेजी आदि भाषाएं एक प्रकार से अयोगात्मक हो गई हैं। शब्दों के साथ विभक्तियों का प्रयोग न होने से निश्चय करना ठीक हो जाता है कि वहाँ किस विभक्ति का रूप अभिमत है। ऐसी स्थिति में यही क्रम निश्चित न रहे तो कुछ कुछ का अर्थ हो जा सकता है। सांप मेढक खाता है और मेढक सांप खाता है। कर्तृत्व का निर्णय पदक्रम से ही होता है। क्रम उलट जाने पर कर्ता कर्म हो जाता है और कर्म करता। अंग्रेजी के वाक्य में भी यही स्थिति होती है। इसलिए ऐसी भाषाओं में पदक्रम का व्याकरणिक महत्व हो जाता है। संस्कृत रूसी जैसी श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में विभक्तियां शब्दों के साथ लगी रहती हैं। इसलिए वाक्य में कहीं भी आने पर उनका अर्थ और व्यापार सुनिश्चित रहता है। यही कारण है कि पदक्रम बदल देने पर भी अर्थ नहीं बदलता। फिर भी जिन भाषाओं में पदक्रम की प्रधानता है उनमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ऐसी बात है। पदक्रम के दो प्रमुख अपवाद हैं, पहला बल और दूसरा छंद। बल देने की इच्छा से पदक्रम में परिवर्तन हो जाता है और बल का अर्थ है कि वक्ता वाक्य में किस अंश को प्रधानता देना चाहता है। जैसे स्वाभाविक पदक्रम के अनुसार वाक्य होगा मैंने रोटी खाई है, किंतु यदि रोटी पद पर बल देना होगा तो यह वाक्य रोटी मैंने खाई है इस रूप में प्रयुक्त होगा। इसी तरह अंग्रेजी में आई मस्ट गो के गो पर बल देने के समय गो आई मस्ट बोलते हैं। ऐसे ही इज डिग्निफाइड नो डाउट में डिग्निफाइड पर बल देने के लिए क्रम उलट दिया जाता है, डिग्निफाइड इज नो डाउट। इस तरह का क्रम परिवर्तन बल देने की भावना से प्रेरित होता है। पदक्रम के परिवर्तन का दूसरा आधार है छंद, जिसका निर्देश पहले हो चुका है। छंद में मात्रा लय और तुक की मांग पूरी करनी होती है और वह पदों के स्वाभाविक क्रम में सदा संभव नहीं होते। इसलिए सभी भाषाओं के पद में पदक्रम की अपेक्षा पाई जाती है। संस्कृत रूसी जैसी भाषाओं में विभक्ति श्रेष्ठता के कारण पदक्रम में अपेक्षाकृत स्वतंत्रता रहती है, क्योंकि क्रम भेद में से अर्थभेद की संभावना कम होती है। पर इस स्वतंत्रता की भी एक सीमा है। उन भाषाओं में भी पदक्रम का बिल्कुल महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पदक्रम स्वतंत्र रहने पर भी यदि किसी पद पर बल देना है तो उसका प्रयोग आरंभ में होता है। बाल का मोदकम खा देती, यह सामान्य कथन हुआ, किंतु यदि मोदक पर बल देना अभिष्ट है तो मोदकम बाल का खा देती यही कहेंगे। दूसरी बात यह कि एव अपि आदि अव्यय संबद्ध पद के साथ ही प्रयोग होते हैं। इनके स्थान में हेरफेर हो जाने से अर्थ में आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। उदाहरणार्थ बालका एव मोदकम खादती और बालका मोदकम एव खादती में अंतर स्पष्ट है। इसी तरह लक्ष्मणोद अपि वनम गतः और लक्ष्मण वनमपि गतः, लक्ष्मण वन गए और लक्ष्मण वन भी गए, अर्थ का अंतर स्पष्ट है और यह अंतर अपि के स्थान भेद से हुआ है। इसलिए पदक्रम की निश्चितता और स्वतंत्रता सापेक्ष धर्म है, उन्हें बिल्कुल अपरिवर्तनीय नहीं मानना चाहिए। तीसरा अपरिवर्तन, पदों की पृथक स्थिति या परस्पर संबद्ध स्थिति में दो दृष्टियों से भेद हो जाता है और वे हैं ध्वन्यात्मक और स्वरात्मक। ध्वन्यात्मक अपरिवर्तन को ही हमारे यहाँ संधि शब्द से कहा गया है। संधि का अर्थ है मेल। दो ध्वनियाँ जब एक दूसरे के निकट आती हैं तो परस्पर प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि का संबंध ध्वनि से है। जैसे कब तक आओगे, वाक्य के प्रवाह में इस वाक्य के पद कब तक आओगे के रूप में सुनाई पड़ते हैं। इसी तरह रह कर जाइए या रख दीजिए बन जाता है। जगदीश आज गया है बन जाता है। पद संबंध इस परिवर्तन की उपमा मनुष्य के आचार व्यवहार से दे सकते हैं। कमरे में अकेले रहने पर हमारा जैसा आचरण होता है वही किसी सभा समिति में नहीं। वहाँ हमारा आचार व्यवहार दूसरे के आचार व्यवहार से नियंत्रित और संयमित हो जाता है। वही स्थिति पदों की भी है। पद अकेले जिस रूप में रहते हैं वैसे ही दूसरे के संपर्क में आने पर नहीं। अपरिवर्तन का संबंध ध्वनि की अतिरिक्त स्वर से भी है। वाक्य में स्वर के आरोह अवरोह या तान की सहायता के लिए बिना काम नहीं चलता। आरोह अवरोह तान आदि हमारी मनोवृत्ति के भंजक तत्व हैं और वे भाषा के हमारी मनोवृत्ति के अनुकूल रूप देकर सजीव बनाते हैं। उनकी कुछ चर्चा ध्वनि और पद के प्रसंग में हो चुकी है, पर वाक्यों में भी उनका कम उपयोग नहीं होता। उदाहरणार्थ न का अर्थ निषेध है, किंतु मैंने आपको कहा था न में यह विधिवाचक हो गया है। यह अर्थ वेद वाक्य में उसके स्थान और स्वर के कारण ही है। भारत यूरोपीय परिवार की भाषाओं में वाक्य के दो मुख्य अवयव पाए जाते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य, इस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसके बोधक शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है में लड़का और घोड़ा उद्देश्य। दूसरा विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसके बोधक शब्द को विधेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ता है और दौड़ता है विधेय है। उद्देश्य विधेय की व्यवस्था सभी भाषाओं के लिए सही नहीं है। उदाहरणार्थ चीनी या एस्किमो में उद्देश्य विधेय का अवकाश नहीं है। उद्देश्य और विधेय के वाचक शब्द पृथक पृथक रहे ही यह आवश्यक नहीं है। दोनों का काम एक पद से भी चल सकता है। जैसे पठा में पढ़ता हूँ, गच्छ से जाते हो। इन वाक्यों में केवल क्रियापद ही हैं, किंतु उसी के उद्देश्य और विधेय दोनों वर्तमान हैं। पठामी या पढ़ता हूँ का अर्थ निश्चित रूप से मैं पढ़ता हूँ होता है। मैं का अर्थ क्रिया में ही वर्तमान है। इसका प्रयोग मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकता। पठामी या पढ़ता हूँ का अर्थ अभी तुम पढ़ते हो या वह पढ़ता है नहीं होता। इसी तरह गच्छसि या जाते हो के साथ तुम का अर्थ अनिवार्य रूप से लगा हुआ है। उससे मैं या वह का बोध नहीं हो सकता। इसलिए ऊपर कहा गया है कि उद्देश्य और विधेय की पृथक स्थिति अनिवार्य नहीं है। वाक्य के भेद में सरल वाक्य का लक्षण यह बताता है कि उसमें कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए, किंतु उपर्युक्त वाक्यों में केवल क्रिया से ही वाक्य निष्पन्न हो गया है। क्रिया और संज्ञा में क्रिया अकेले ही वाक्य बना सकती है किंतु संज्ञा नहीं, कारण कि क्रिया में करने वाले का कुछ न कुछ अंश व्यक्त रहता है। यही कारण है कि संज्ञा की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। बाघ, सांप, सावधान आदि वाक्यों में केवल संज्ञा का प्रयोग देखकर यह संदेह नहीं होना चाहिए कि वाक्य संज्ञा मूलक भी होते हैं। वस्तुतः वहाँ भावातिरेक, भय, घबराहट आदि के कारण क्रिया का केवल उच्चारण नहीं हो पाया, अन्यथा क्रिया है वहाँ भी। इसलिए वैसे वाक्यों के में क्रिया का लोप मानना चाहिए, अभाव नहीं।